ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। हरे कृष्ण। अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसे वस्तुएं विद्यमान नहीं है। जब भगवान ऋषभदेव द्वारा भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे, तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मग्न थे। चूंकि ये स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के लिए तैयार नहीं थे। तात्पर्य, बंगाल में घोड़ा डिम शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़ा कभी अंडा नहीं देता, इसलिए इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। संस्कृत में एक शब्द है ख पुष्प, जिसका अर्थ है आकाश कुसुम। आकाश में कोई पुष्प नहीं खिलता, इसलिए ख पुष्प या घोड़ा डिम्ब जैसी वस्तुओं की कभी याचना नहीं की जा सकती जाती। महाराज ऋषभदेव के राज्य में मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। राजा ऋषभदेव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत मात्रा में उपलब्ध थीं। फलतः प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट था और उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं थी। ये सरकार की पूर्णता का परिचायक है। यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी होती रहती है, तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। प्रजातंत्र के इस युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं है, किंतु यहाँ पर ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है जिसे पूरे विश्व का सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान महाराज ऋषभदेव के राज्य में सभी लोग सुखी थे। हरे कृष्ण। तो आज रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस भी है। क्या लिखा है यहाँ पे? तो रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महोत्सव की। तो रुक्मिणी जी द्वारका में 16,000 पटरानियों में प्रमुख पटरानी मानी जाती हैं। द्वारकाधीश की सबसे प्रमुख पटरानी मानी जाती है रुक्मिणी जी। चंद्रावली की विस्तार बताई गई है। इससे पहले कि आज के श्लोक के बारे में बताएं, उनके बारे में संक्षेप रूप में बता रहे हैं, बहुत ही संक्षेप रूप में। श्रील रूप गोस्वामी ने ललित माधव में बताया है किस तरह से ये गोपियाँ 16,100 गोपियाँ किस तरह द्वारका की 16,100 पटरानियां बनी, किस तरह से वो स्थानांतरित हुई। तो क्योंकि आज रुक्मिणी जी का आविर्भाव है, तो उनको चंद्रावली का विस्तार बताया गया है। तो कथा इस प्रकार से है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में है। कथा बहुत लंबी है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताएंगे। तो विंध्या पर्वत को द्वेष हुआ था हिमालय से, कि हिमालय पर्वत का जो दामाद है वो बहुत ऐश्वर्यवान है। कौन है दामाद? शंभु, शिवजी महादेव। बहुत ऐश्वर्य उनके पास, और उनकी जो कन्या है अति सुंदर है, पार्वती बहुत सुंदर है। इस कारण से विंध्या पर्वत विंध्या को द्वेष हुआ हिमालय से। तो उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी भी एक संतान हो, इतनी ही सुंदर संतान। तो इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे थे, और तो इस प्रकार प्रार्थना करने से उनको लाभ क्या हुआ कि ब्रज में जब वृषभानु और चंद्रभानु, ये दो भाई, वृषभानु और चंद्रभानु ये दोनों भाई हैं। वृषभानु की पुत्री हुई श्रीमती राधारानी, और चंद्रभानु की पुत्री हुई चंद्रावली। तो दोनों बहन हैं, सगी बहन नहीं है लेकिन बहन है। तो वृषभानु के हृदय से और चंद्रावली चंद्रभानु से प्रकट हुए। योग माया की व्यवस्था से इनका स्थानांतरण हुआ और ये विंध्या पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हुए। तो इस समय क्या हुआ कि ब्रज में कंस ने पूतना को भेजा हुआ था, खेचरी नाम की राक्षसी थी। पूतना का कार्य था बच्चों को उठाना, नवजात शिशु को उठाना और उसको मार डालना। खेचरी पूतना, उसका कार्य यही था, उसकी सेवा यही थी कंस के लिए। तो पूतना जो है उसने क्या किया, ये बच्चे उठा लिए विंध्या जो पर्वत के जो दो कन्याएं थी, और भी कन्याएं थी, पांच कन्याएं, सब कन्याओं का मुझे नाम याद नहीं है, श्यामा भद्रा शैव्या और कौन है, ललिता और एक और कोई है, तो इस प्रकार पांच कन्याएं। तो ये जो कन्याएं हैं इनको चुराया गया था पूतना के द्वारा और पूतना आकाश से इनको उड़ा के ले जा रही थी। तो विंध्या पर्वत ने यज्ञ करवाया कि जब पता चला कि उनकी कन्याएं पूतना लेकर चले गई हैं तो यज्ञ कराया, कई सारे मंत्रों का उच्चारण कराया और मंत्रोच्चारण से यज्ञ करने से पूतना के हाथ से गिर गई, ये कन्या गिर गई। तो राधाणी जब गिरी तो वो किनको प्राप्त हुई, मुखरा को प्राप्त हुई, यानी कि वृषभानु को प्राप्त हुई। तो राधाणी वास्तव में उनका प्राकट्य बरसाना में हुआ लेकिन बाद में रावल में वो प्राप्त हुई थी, ये तो सब जानते ही हैं। राधाणी के जन्म के बारे में कई प्रकार की और कथाएं भी हैं, गर्ग संहिता में आप देखेंगे तो अन्य कथा आपको प्राप्त होगी, लेकिन वो जो कथा है वो किसी अन्य कल्प की कथा है, हम तो उसी कथा को स्वीकार करेंगे, यानी कि उसको उसी का वर्णन कर रहे हैं जो श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है। हालांकि हर कल्प की कथा प्रमाणिक कथा है। तो इस प्रकार मुखरा यानी कि नानी कहते हैं राधाणी की नानी, हाँ मुखरा, तो जो भी है राधाणी उनको प्राप्त हुई। और जो चंद्रावली थी वो गिर गई कहां पर, नदी में गिर गई, कुंदिनपुर। तो समय के हिसाब से नाम भी बदलता गया है। तो वैदर्भ के राजा थे, वैदर्भी इसलिए बोला जाता है, राजा भीष्मक को प्राप्त हुई, कौन प्राप्त हुई, चंद्रावली, जिन्होंने अपना विस्तार किया और वहां पर वो रुक्मिणी जी के नाम से जाने गए। और बाद में पूर्णवासी ने क्या किया, जो कि योग माया है, उन्होंने फिर से उनको ब्रज में स्थानांतरित कर दिया। तो रुक्मिणी जी वहां रह गई और चंद्रावली वापस ब्रज में आ गई। और इसी तरह से योग माया ने फिर से जो क्या किया, चंद्रावली को वापस लेकर आ गए, तो रुक्मिणी जी वहां पर रह गए। तो इस तरह से रुक्मिणी जी का वहां पर प्राकट्य हुआ। तो आज आविर्भाव दिवस है, तो रुक्मिणी जी के बारे में तो बहुत सारी कथाएं श्रीमद् भागवत में दी गई हैं, किस तरह से भगवान कृष्ण ने भरी सभा में जिस तरह से सिंह आकर जो है जंगल के बीच में आकर कई पशुओं के बीच में आकर ले जाता है, उठाकर हिरण को ले जाता है, इसी तरह से भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश जो है वो रुक्मिणी जी को उठा कर ले गए, क्योंकि कौन से विवाह करना चाह रहा था रुक्मिणी जी से, शिशुपाल, है ना, तो सबके सामने उठा के ले गए। रुक्मिणी जी ने बहुत सुना था भगवान कृष्ण के बारे में, श्रवण करने मात्र से ही रुक्मिणी जी का आकर्षण हो गया था कृष्ण से, उनके सौंदर्य से, उनके गुणों से, उनके कार्यकलाप से। तो उन्होंने कहा कि बस आप ही का इंतजार है, नहीं तो फिर सारा जो है अमंगल होने वाला है, आप मेरी रक्षा करें। तो रुक्मिणी जी का जो है, रुक्मिणी जी का अपहरण किया भगवान कृष्ण ने, और उस तरह से रुक्मिणी जी जो है द्वारकाधीश की प्रमुख पटरानी बने। तो रुक्मिणी जी जो है उनका दक्षिण भाव है, लेकिन राधाणी का जो भाव है वो क्या है, वाम भाव है, लेफ्टिस्ट मूड और राइटिस्ट मूड कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो इस तरह से रुक्मिणी जी जो है वो द्वारका में है। इस तरह 16108 जो गोपियां हैं, 16100 गोपियां वो द्वारका की महिषियां बन गई। सबके विस्तार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया श्री रूप गोस्वामी ने, लेकिन उसके लिए फिर उसके लिए अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। ये तो हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया, बहुत संक्षिप्त में बता दिया है ना, किस तरह से राधारानी सत्यभामा बनी, किस तरह से ललिता जी जो है वो जाम्बवती बनी, ऐसा वर्णन है। तो आज का ये श्लोक है जिसमें भगवान ऋषभ देव के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान ऋषभ देव उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, प्रजा उनसे बहुत स्नेह करते थे, और प्रजा का जो ये प्रेम था राजा के प्रति यानी महाराज ऋषभ देव के प्रति, भगवान ऋषभ देव के प्रति, ये कोई प्रेम देहात्मक धरातल पर नहीं था, ये वास्तव में प्रेम था। और क्यों प्रेम था, किस कारण से प्रेम था? इस कारण से प्रेम नहीं था कि भगवान ऋषभ देव प्रजा को कोई भौतिक सुविधा दे रहे थे या सुख संपत्ति दे रहे थे, वो सब तो था ही, लेकिन उस कारण से प्रेम नहीं था। किस कारण से प्रेम था? क्योंकि प्रजा को भगवान ऋषभ देव भगवान की भक्ति दे रहे थे, भगवत भक्ति दे रहे थे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना साक्षात भगवान करते हैं, तो इस कारण से प्रजा जो है भगवान ऋषभ देव से संतुष्ट थी। ये नहीं कि आपको हम वोट दें, आप अगर हमें वोट देंगे तो आपके लिए हम लोग टैक्स आपका जो है कट कर देंगे, आपको इतना आय नहीं देना पड़ेगा, आपको व्यवसाय मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा, है ना, हमें वोट दीजिए, हमें वोट। यहां तो नेताओं की इतनी बुरी हालत है, विज्ञापन करके भीख मांग रहे हैं, वोट की भीख मांग रहे हैं, फिर भी कोई देने वाला नहीं है उनको। कलयुग में देखिए कितनी दुर्दशा है कि राजा को प्रजा से भीख मांगनी पड़ती है, नेताओं को जय हो राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो राजा को, नेताओं को, राजा तो नहीं कहेंगे, राजा तो बने ही नहीं अभी तक, नेताओं को प्रजा से वोट मांगना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है राजा बनने के लिए, लेकिन प्रजा वोट ही नहीं डालती है, जो शिक्षित प्रजा है वो डालती नहीं है, चुनाव ही नहीं हो पाता है इनका। और चुनाव करता कौन है? अशिक्षित लोग, जिनको धन देकर या नौकरी देकर खरीद लिया जाता है, ट्रकों में भर भर के लाते हैं और धन देकर उनको खरीद लेते हैं और वो चुनते हैं ऐसे नेताओं को। अशिक्षित शूद्र प्रजा जब ऐसे अशिक्षित और शूद्र नेता को चुनते हैं तो समाज में केवल शूद्र का शूद्र की ही प्रधानता होती है, इसलिए स्कंद पुराण दिया कलौ शूद्र संभवा, इसी कारण से दिया है शास्त्रों में, है ना, जन्मना जायते शूद्र, कि कलयुग में जन्म से सब शूद्र हैं, संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे शूद्र जो है ऐसे ही शूद्र को राजा बनाते हैं। ये क्या है? अंधा यथा अंधेर उपनीय मानस, अंधा यथा अंधेर, राजा भी अंधा है, प्रजा भी अंधी है, सब लोग कुएं में गिर रहे, कोई सुखी नहीं है, इसलिए समाज में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, उनका असली स्वार्थ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना नहीं है, वो अपने स्वार्थ अपने इंद्रिय तर्पण के लिए राजा या नेता बनना चाहते हैं और प्रजा को धोखा देकर उनका धन अर्जित करना चाहते हैं, स्वयं भी नर्क जाते हैं, प्रजा को भी नर्क ले जाना चाहते हैं। तो वास्तव में ऐसे लोगों को वोट देने से क्या है? यहां कोई हम भाषण नहीं दे रहे हैं किसी पार्टी के लिए लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है, ये वास्तविक सच्चा है ना, ऐसा है कि हमने कोई पार्टी बना ली तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दें, ऐसा भी नहीं है। निष्पक्ष होकर सत्य को प्रकट करना ये आवश्यक है, क्योंकि ये शास्त्र की वाणी है, ये भागवत की वाणी है, भागवत धर्म, हमें भागवत धर्म की स्थापना करनी है तो ऐसे नेताओं को समाज से हटाना पड़ेगा।
और सरकार को कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर भक्तों ने कहा कि कृष्ण भावना की सफलता का पता चलेगा जब बड़े बड़े कोर्ट के जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी तिलक लगा के जाएंगे, और ऐसे जो न्यायाधीश हैं वो न्याय प्रस्तुत करेंगे, तब समाज का कल्याण हो सकता है। इसके देश के नेता, इस देश के अभिनेता और देश के न्यायाधीश, ये सब कृष्ण भावना भावित होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुपाद जी की कई इच्छाओं में से एक इच्छा थी कि भारत सरकार जो है वो कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि धर्म का जो मूल है, आधार है, इस देश में है, इस पृथ्वी में है, पृथ्वी के इस भाग में है। और क्योंकि भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत महाराज, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम पड़ा है भारत, तो इनकी शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय आने वाले हैं बहुत सारे, अगला अध्याय पूरा ही महत्वपूर्ण है, पांचवा अध्याय है, प्रयास करना चाहिए सारे श्लोक याद कर लेना चाहिए। भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर प्रवचन भी दिया, किताब भी अलग से प्रकाशित हुई। तो यहां पर श्लोक में बड़ा अच्छा तात्पर्य में बड़ा अच्छा बताया है, और श्लोक में बड़ा अच्छा बताया है, प्रभुपाद ध्यान दे रहे हैं घोड़ा घोड़ा डिंब, घोड़ा डिंब का मतलब होता है आकाश में फूल, या घोड़ा अगर अंडा देता है, घोड़ा कभी अंडा देता है, बंगाल में कहावत है घोड़ा डिंब का मतलब है कि घोड़े ने अंडा दिया, या आकाश में पुष्प, त्रिदश पूरा आकाश पुष्प आए थे, है ना। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, आप सबने सुना होगा कई बार ये श्लोक, कैवल्यम नरकाय थे त्रिदश पूरा आकाश पुष्प आए थे, है ना। तो त्रिदशपुर मतलब होता है जहां पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, उनके जो निवास स्थान है भक्त के लिए आकाश के फूल के समान है, आकाश के फूल समान है। या फिर एकत्व की प्राप्ति होना, या भगवान बनने की इच्छा, यह भी क्या है, नरक के समान है। कैवल्यम नरकायते, कैवल्यम नरकायते, और क्या बता रहे हैं, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्वपटली प्रोत्खास द्रमष्टायते, विधि महेंद्रादिश किटायते। विधि महेंद्रादिश का मतलब यह है, विधि का मतलब ब्रह्मा जी, और महेंद्र का मतलब इंद्र, इनके जो पद है एक भक्त के लिए कीड़े के समान है, लाइक इंसेक्ट। कीड़े का कोई पद होता है, उसको तो हम कुचल के चले जाते हैं पांव के नीचे, तो ब्रह्मा जी का पद जो है, इंद्र का पद जो है, एक भक्त के लिए एक कीड़े के समान है। किटायते विश्वम पूर्ण सुखायते, और भक्त के लिए पूरा विश्व क्या है, ये सुखालय है, दुखालय नहीं है। वैसे भगवान गीता में कह रहे हैं दुखालय मशाश्वतम, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे विश्वम पूर्णम सुखायते, और यही यहां पर देख रहे हैं कि जो प्रजा है वो बहुत सुखी है। भगवान ऋषभदेव के राज्य में, भगवान राम के राज्य में सब सुखी थे, उनके प्रजा सारे सुखी थे, जन्म जरा व्याधि उनको पीड़ित नहीं कर रहे थे, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, राम राज्य में ये सुख था, जब शरीर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। और आज अगर ऐसा आपको वरदान मिल जाए तो क्या हालत होगी बताइए, वैसे ही पाप कर रहे हैं लोग, जबकि पता है कि शरीर छोड़ना है, और पता चले कि शरीर आप छोड़ेंगे जब आपकी इच्छा होगी तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यहां पर होता है यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरव एवस्तमा, तो यहां पर बता रहे हैं कि योगी जन जो है वो इंद्रियों को निग्रह करने के लिए ध्यान लगाते हैं, लेकिन भक्त के लिए ये इंद्रियां बिल्कुल उस सर्प के समान है जिसके दांत निकाल लिए गए हैं, तो ये भक्त जो है इंद्रियों से घबराता नहीं है। प्रोत्खास्ट, प्रोत्खास्ट मतलब जो है उसका दांत निकाल दिया गया है ना, अप्रूट कर दिया गया है उसके दांत को, जो जहरीला दांत होता है सर्प का, उसको अगर निकाल दिया जाए तो वो सर्प जो है वो फिर क्या है, डरावना नहीं होता है। जैसे हमारे हरिसुंदर प्रभु ने एक छोटा सा अजगर जो है वो अपने गले में डाल लिया शिवजी का रोल करने के लिए, वो लोग घबरा रहे थे बाद में महाराज ने बताया ड्रामा के बाद, हरिसुंदर ने जो सांप था पहना हुआ था असली था। महाराज ने सूचना दी बाद में। तो अजगर क्या बार बार गर्दन के ऊपर जा रहा है, गर्दन को मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो गर्दन तोड़ देगा, वो तो बहुत शक्तिशाली होता है। तो बार बार उस सांप को जो है वो नीचे कर रहा है सुंदर, वो ऐसे से घूमता जा रहा है। तो जो सपेरा था, जो भी जिसने वो दिया था अजगर दिया, उसने बता दिया था उसको नीचे करते रहना, नहीं तो गर्दन तोड़ देगा आपकी, इसमें जहर तो नहीं है, जहर मैंने निकाल लिया है, दांत निकाला हुआ है। तो भक्तों के लिए जो है ये इंद्रियां ये खतरनाक नहीं है। वैसे तो इंद्रियों में जहर भरा रहता है, काम वासना का जहर, बहुत सारे जहर भरे इंद्रियों में। तो इंद्रियों में क्योंकि जहर भरा है, तो एक बद्ध जीव जो होता है ये इंद्रियों को लेकर संघर्ष करता है। मनसष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी गर्षति, लेकिन भक्त जो है संघर्ष नहीं करता है इंद्रियों को लेकर, क्योंकि भक्त क्या करता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाता है जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है। इसलिए डर नहीं है, भय नहीं है ना, इसलिए भक्त कभी भयभीत नहीं होता है। भक्त का पहला लक्षण है, भगवान गीता में बता रहे हैं, भक्त का पहला लक्षण है कि वो निर्भीक होता है। निर्भीक क्यों होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कृष्ण की शरण में है। रक्षति विश्वासो, उसको पूरा विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, इसलिए भय नहीं। लेकिन भय इसलिए भी रहता है कई बार, प्रहलाद महाराज की अगर प्रार्थना सुनेंगे तो उसमें प्रहलाद महाराज भय भी प्रकट कर रहे हैं। वो क्या भय रहता है कि दोबारा कहीं मैं संसार में भव सागर में ना फंस जाऊं, है ना, शुद्ध भक्ति जो है मेरे हाथ से छिन ना जाए, भक्तों का संग छूट ना जाए, ये भय रहता है। ये भय तो रहता है भक्तों, ऐसा भय रहना चाहिए। जब तक ये भय है तब तक हमारी भक्ति सुरक्षित है, और ये अगर भय ना हो तो फिर माया तैयार है। माया हमेशा तैयार है हमें निगलने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए। तो इस प्रकार इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा और इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा ही रोचक विषय है। चैतन्य चरितामृत में अगर आप देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में जो उन्होंने शिक्षा दी श्री रूप गोस्वामी को, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। महाप्रभु रूप गोस्वामी और वल्लभ को मिले थे, अनुपम गोस्वामी को मिले थे प्रयाग में एक दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर में, और वहां श्री रूप गोस्वामी ने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने पर उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिश्व। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन आज के प्रसंग जो संबंधित है उस शिक्षा को ध्यान रखते हुए हम लोग ये बताने का प्रयास करेंगे जो यहां चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताया है। महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, माली होया करे सही बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। जब किसी व्यक्ति को भक्ति बीज प्राप्त होता है तो उसे चाहिए कि वह माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगेगा। अंकुरित होता है बीज, बीज बोइए, जल डालिए, सूर्य के नीचे रखिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हवा, इसे बीज अंकुरित होता है। इसी तरह से भक्ति लता बीज भी अंकुरित होती है। अंकुरित होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, पत्ता, उसके बाद क्या निकलता है, फूल, उसके बाद निकलता है फल। ऐसा नहीं है बीज बोते फल निकलेगा, होता है कभी, ये क्रमशः विकास होता है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो इसी तरह से बता रहे कि सिंचन करो तो बीज अंकुरित होगा। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए पाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम पाए। तो भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की सीमाओं को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के मध्य विरजा नदी को पार कर जाती है। ये ब्रह्मलोक पहुंचकर उस स्तर को भी भेद कर परम व्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। ये तो एक सीधी सीधी बात बता दी चैतन्य महाप्रभु ने कि इस तरह से बीज अंकुरित होती है और भक्ति लता बढ़ती है और ब्रह्मांड को भेदती हुई जाती है, विरजा नदी को भी पार करके जाती है और वैकुंठ धाम को भी पार करके गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। और कहां पहुंच जाती है? तवे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। इस तरह उन कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त होता है जो परमात्मा के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। तहा विस्तारित होया फले प्रेम फल यहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। ये लता गोलोक वृंदावन में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है किंतु नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। तो बहुत ही सावधानी से सींचना पड़ता है क्योंकि कई बार बगीचे में जंगली जानवर आ जाते हैं, बगीचे में कई जंगली कीड़े आ जाते हैं, कीड़े और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहां तक भी जंगली पौधे भी होते हैं जो आपकी मूल लता को जो है क्या कर देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं और अंततः समाप्त कर देते हैं, उस बीज को उखाड़ के फेंक देते हैं। और भक्ति जो जंगली पौधा है देखने में भी लगता है पौधा है, हरी हरी लताओं में एक अलग लता निकलने लगती है साथ में ही और वो पूरा जो है उसको ढक देती है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़ा उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। लेकिन हाथी माता मतलब जो पागल हाथी है, मत हाथी है, अगर वो बगीचे में प्रवेश कर जाए तो वो क्या करता है, बगीचे में जितने पौधे हैं या पेड़ हैं वृक्ष हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको खड़ के फेंक देता है। तो उसी प्रकार जब कभी हमारी दुर्दशा होती है किस कारण से, जब हम वैष्णव के चरणों में अपराध कर बैठते हैं तो हमारी भक्तिलता भी जो है वो खड़ जाती है। कहने का अभिप्राय ये है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं आने के बाद भी हम लोग प्रसन्नचित क्यों नहीं रहते। हम लोग भक्ति मार्ग में आते हैं तब भी हमें आनंद क्यों नहीं मिलता, आनंद क्यों नहीं मिलता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। है ना, कि भक्ति मार्ग में आ गए, कई सालों साल बीत गए, रूप गोस्वामी ने जो दिए हैं साधना भक्ति के नियम दिए हैं, वैदिक साधना भक्ति के नियम दिए हैं, उस सब का पालन करने पर भी हम लोगों को आनंद नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? तो उसका ही कारण बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हालांकि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये बिल्कुल सही प्रमाणिक विधि है, लेकिन उसके बावजूद भी इन कारणों से आपकी भक्ति जो है वो रुक जाती है। आप ट्रेन में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी कोच में बैठे हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, ट्रेन में इंजन नहीं है। आप सोच रहे मैं फर्स्ट क्लास एसी में बैठा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी लोग सेकंड क्लास में बैठे हैं पीछे वाले, हम लोग फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हैं लेकिन ट्रेन आगे नहीं चल रही, और फायदा क्या वहां बैठने का, कोई फायदा है? तो इस तरह से यहां पर ये बात बताइए, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम अध्याय में प्रथम जो भाग है इसका, उसमें प्रथम अध्याय है उसमें 17 श्लोक है जिसमें श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण श्री रूप गोस्वामी ने बताया है क्लेशाग्नि, समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है, रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। तो श्री रूप गोस्वामी ने ये जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है इनको 3 भागों में विभाजित किया है। श्री रूप गोस्वामी का कहना है पहले जो 2 लक्षण है वो साधना भक्ति के लक्षण है और जो दूसरे और लक्षण है वो भाव भक्ति के लक्षण है और आखिर में जो 2 लक्षण बताए गए हैं वो प्रेम भक्ति के लक्षण है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप साधना भक्ति कर रहे हैं वास्तव में तो ये पहले 2 लक्षण प्रकट होने चाहिए। रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ लिखा है ये इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक रूप से लिखा है कि कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब इस ग्रंथ का प्रकाशन किया तो एक ग्रंथ देखा आपने भक्ति रसाम सिंधु दिखाई, इसलिए भानु महाराज ने, भानु स्वामी महाराज ने इसका अनुवाद किया है दो भागों में, इसमें लगभग 2500 श्लोक है। अगर आप मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग जो है चकरा जाएगा, सर घूमने लगेगा। प्रभुपाद जी ने पता नहीं किस तरह से, प्रभुपाद जी की महानता है, प्रभुपाद जी इन ग्रंथों में इतने दक्ष थे, प्रभुपाद झांक कर ही समझ जाते थे कि वास्तव मुझे क्या सार प्रस्तुत करना है। क्रीम वही दे सकता है जिसने वास्तव में ग्रंथों का अध्ययन बड़ी गहराई से किया हो, वही सार प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि व्यासदेव जी ने भी देखिए, समस्त पुराणों को लिखने के बाद, वेदों को लिखने के बाद, उपनिषदों को लिखने के बाद फिर सार प्रस्तुत किया, पहले थोड़ा सार प्रस्तुत किया। इसी तरह ऋषि रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा मूल रूप में, लेकिन इसी भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ का जो है सार रूप श्रील प्रभुपाद ने दे दिया बहुत सरल तरीके से, वो भी समझ में नहीं आता कई भक्तों को। तो यहां पर बड़े बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि का मतलब क्या है? समस्त प्रकार के क्लेश, दो प्रकार के क्लेश होते हैं, एक होता पाप और एक होता है बीज, है ना। तो पाप जो है वो चार प्रकार के पाप कर्म के फल बताए गए हैं, जिसको कहते हैं कूट, बीज, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। ये सब क्या है? पाप कर्म के फल। प्रारब्ध का मतलब है जैसे चश्मा लगा हुआ कई लोगों को, ये प्रारब्ध है जो दिखाई पड़ रहा है, बाल उड़ गए ये प्रारब्ध नहीं है, बोलेंगे मेरे बाल नहीं, ये भी प्रारब्ध, ये भक्ति का लक्षण है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये कोई कर्म फल नहीं है कि बाल उड़ गए सब। कई लोगों ने हेड शेप किया हुआ तो ये सब की, इनके सबके प्रारब्ध है। लेकिन जो चश्मा लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रारब्ध है, ये शरीर ही अपने आप में प्रारब्ध है। बोलेगा कर्म फल क्या है? ये फल इतना बड़ा फल है, कोई 5 फुट का फल है, कोई 6 फुट का फल है, ये सब फल ही तो है, ये सब फल है, ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध जो है श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर के अनुसार, प्रारब्ध इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, प्रारब्ध समाप्त होता है नाम आभास की स्थिति में, जब शुद्ध नाम का आभास होता है तब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। नामाभास कई प्रकार के हैं, इसलिए चंडाल यावन मलेच्छ भी जब संकीर्तन में भाग लेते हैं जल्दी ही वो लोग भक्ति के कार्य में लग जाते हैं, फिर वो चंडाल ही रह जाते हैं, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में इसको श्रद्धा नामाभास कहते हैं, श्रद्धा नामाभास इसको कहते हैं, इसको रियल नामाभास कहा जाता है, वास्तविक नामाभास कहा जाता है, वो प्रकट होता है रुचि के स्तर पर। रुचि के स्तर पर जब कोई पहुंचता है तो व्यक्ति नाम आभास उसको होता है, नाम का आभास हो जाता है उसको, यानी कि हर प्रकार के पाप कर्म और पुण्य कर्मों के फलों से छुटकारा मिल जाता है पूर्णतः, आत्यंत की। एक होता है प्राय की और एक होता है आत्यंत की। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे जो पाप कर्म के फल हैं, यानी कि दुष्कृत उत अनर्थ जिसको कहते हैं विश्वनाथ जी ठाकुर, या फिर सुकृत उत अनर्थ है, ये प्राय की होने लग जाते हैं अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे, लेकिन निष्ठा के स्तर पर ये आत्यंत की हो जाते हैं। आत्यंत का मतलब क्या जानते हैं? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब उसके बाद कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे मन में, बहुत गहरे संस्कार हैं, डीप इंप्रेशंस हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के डीप इंप्रेशंस हैं, जिसको पुण्य कर्मों का फल कहा जा सकता है या पाप कर्मों का फल कहा जा सकता है, बहुत ही गहरे संस्कार हैं, उन संस्कारों को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। गीता में भगवान ने क्या बोला है, भगवत गीता पढ़िए, भक्ति रसाम सुंदर पढ़ेंगे तो भगवत गीता में भी आपको भक्ति रसाम सुंदर नजर आएगा, भक्ति रसाम सुंदर पढ़ेंगे तो श्रीमद भागवत में भी आपको भक्ति रसाम सुंदर नजर आएगा, क्योंकि ये साइंस है और भगवत गीता परफेक्ट साइंस है। प्रथम अध्याय भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने अपने अनर्थों के बारे में चर्चा की है, अच्छे रोगी हैं, अनर्थ बता रहे हैं अपने, और भगवान फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये अनर्थ है, प्रथम अध्याय ये है। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो निष्ठा का लक्षण है, करिष्ये वचनम तव। तो कहने का मतलब है कि भगवद गीता बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, गीता में भगवान कहते हैं ये शांत अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा सद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत होकर विद ग्रेट डिटर्मिनेशन भगवान कह रहे हैं बहुत दृढ़ व्रत होकर मेरे भक्त क्या करते हैं, भक्ति में लगते हैं। कब लग पाते हैं? जिनके समस्त प्रकार के पाप जो है, पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं आत्यंतिक ही। इसे उस स्टेज को निष्ठा कहा गया। निष्ठा का मतलब होता है जो निरंतर स्थिर रहता है भजन क्रिया के अंगों का पालन करने में, जो स्थिर रहता है उस भक्त को निष्ठा के स्टेज पर कहा जाता है। और इससे पहले जितने भी भक्त हैं जो निष्ठा के स्तर पर नहीं है वो सब प्राकृत भक्त कहलाते हैं, भले ही वो कितना भी किताब पढ़ ले। ग्रंथों को पढ़ने से हम लोग निष्ठा के स्टेज पर नहीं पहुंच जाएंगे, ग्रंथों का अभ्यास जब करेंगे तब निष्ठा के स्तर पर पहुंचेंगे। जब ग्रंथों में जो लिखा गया है उसका जो अभ्यास किया जाता है, इसको भजन क्रिया किया जाता है, उस भजन क्रिया का अभ्यास किया जाता है जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, तब अनर्थों की निवृत्ति होती है, तब जाके कोई निष्ठा के स्तर पर पहुंचता है, तब जाके कोई दृढ़तापूर्वक भजन कर सकता है। नहीं तो उससे पहले जितनी भी भजन क्रिया हो रही है वो सब अनिश्चितता भजन क्रिया है, और अनिश्चित भजन क्रिया की अवस्था में हम कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए हरिनाम लेते हुए भी दुखी रहते हैं कई लोग, क्योंकि भक्त का पहला लक्षण है ही इज ऑलवेज जॉयफुल, ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। साधना भक्ति करते हुए भी भक्त खुश रहता है। हम यहां प्रेम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे लीलाओं में प्रवेश करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां प्रारंभिक बात की जा रही है कि अगर वास्तव में कोई साधना भक्ति कर रहा है, वास्तव में कोई साधना भक्ति कर रहा है तो उसमें भी व्यक्ति खुश रहेगा, ब्लिसफुल रहेगा, चेहरे से पता चल जाएगा कि व्यक्ति भक्त जो है ये प्रोसेस को ठीक तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे एक मरीज आता है डॉक्टर के पास, जब वो दवाई लेता है तो दवाई ले जैसे ही उसके ऊपर असर करने लगती है वो खुश होने लगता है, रोग ठीक नहीं हुआ, पूरा रोग उसका पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी वो भागने नहीं वाला नहीं है, वायरल था उसको, लेकिन दो दिन के बाद जैसे ही दवाई लेने लगा, दो दिन के उपरांत उसको लगा कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, उसके चेहरे में खुशी नजर आती है। उससे पहले वो बिल्कुल मायूस था, बिल्कुल शोकमग्न था, लेकिन जैसे ही दवाई का असर पड़ा चेहरे में एक मुस्कुराहट सी आ गई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो भागने लग गया है, जिमनास्टिक्स करने लग गया, उसका अर्थ यह है कि अब उसको आशा की किरण उसके नजर आने लगी उसके चेहरे पर। क्योंकि आज का जो तात्पर्य है इससे संबंधित है, आज के तात्पर्य में लिखा है कि प्रजा बहुत प्रसन्न चित्त थी, उनका विशेष स्नेह था भगवान ऋषभ देव से, क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे, भक्ति में लगे हुए थे। इस कारण तो ये बात बताने के लिए हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर का कहना है कि निष्ठा के स्तर पर दुष्कृत उत अनर्थ और सुकृत उत अनर्थ ये आत्यंतिक हो जाती है। यानी हरिनाम लेते हुए आपको अपने पूर्व जन्म के जो पाप कर्म के फल हैं या पुण्य कर्म के फल हैं ये सताते नहीं है, दोनों ही बाधा है, पाप कर्म भी बाधा है और पुण्य कर्म भी बाधा है। कोई सोचे मैं समाज सेवा कर रहा हूं, अस्पताल बना रहा हूं, अब मेरा भजन अच्छा होगा, नहीं होगा अच्छा भजन, तब भी आपको क्या होगी, चिंता होगी, भौतिक सुख की चिंता होगी, भौतिक लाभ की चिंता होगी, तो उसमें ही फंसे रहेंगे। इसलिए स्वर्ग लोग में वहां पर भजन नहीं कर पाते, वहां पर भजन नहीं होता स्वर्ग लोग में, प्रयास किया सकता है, किया जा सकता है, लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए ऐसे प्राकृत भक्तों को स्वर्ग लोग भेज देते हैं, नंदन कानन में मंदाकिनी नदी में प्रयास करो, होगा नहीं, अप्सराओं के बीच में होगा नहीं। तो यहां पर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे, किंतु यदि लतार अंगे उठे उप शाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाएं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की अवांछित लालसा की लताएं बढ़ने लगती हैं, ऐसी लताओं की असंख्य किस्में हैं, शाखाओं के साथ उप शाखाएं भी निकलती हैं। उप शाखा मतलब सब ब्रांचेस नहीं है, यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग सब ब्रांचेस नहीं है, उप शाखा का मतलब है कि वो शाखा नकली है, कपटी शाखा है, वो देखने में लग रहा है शाखा है लेकिन वास्तव में जंगली पौधा, जंगली जो पौधा है उसकी शाखा है वो, और वो आपकी मूल शाखाओं को खत्म करने वाले हैं, खत्म करने के लिए तैयार खड़ा है। तो क्या क्या उप शाखाएं हैं जिसके कारण हम लोग दुखी रहते हैं, भक्ति में आने का आने के बावजूद भी हमें आनंद नहीं प्राप्त होता है? निश्चित आचार, कूटी नाटी, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो उप शाखा गण। ये जब तक उप शाखा गण रहेंगे तो चेतने महाप्रभु कहते हैं प्रथमे उप शाखा करे छेदन तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। बोलते जब तक आप उप शाखा का आप छेदन नहीं कर दोगे तब तक ये मूल शाखा वृंदावन नहीं आएगी। वैसे आप वृंदावन चले जाओगे, लोग वैसे जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, राधाकुंड जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, ब्रज में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन उप शाखाओं को उन्होंने निकाला नहीं है तो वो मूल शाखा जो है वृंदावन गई नहीं, और आप गए भी तो उप शाखा को लेकर गए, उप शाखा को लेकर वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। योग माया वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, महामाया में वृंदावन जरूर प्रवेश कर सकते हैं जैसे कई लोग प्रवेश कर चुके हैं वहां। इसलिए ऐसे लोग उप शाखा लेकर वृंदावन में जाकर वो बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, लेकिन सारी कोठियां खाली पड़ी हुई है क्योंकि वहां भजन करने का उनको अधिकार ही नहीं है। इसलिए वहां जाकर अगर हरिनाम भी लेते हैं तो दिल्ली का स्मरण होता है, इसलिए कुछ समय के बाद फिर से दिल्ली आ जाते हैं। कई लोग तो शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन जब अधिक बीमार हो जाते हैं तो दिल्ली वापस आते हैं और दिल्ली आकर शरीर छोड़ते हैं, राधारानी उनको रहने नहीं देती है, बोलते आउट। उप शाखा वाले हो तुम तो यहां क्या कर रहे हो, या तो मूल शाखा वाले रह सकते हैं, उप शाखा वाले दिल्ली में रहते हैं, वहां जाके इलाज कराओ, वहीं शरीर छोड़ना, यहां गंदा मत करो ब्रज को, तो वापस आना पड़ता है। तो ये मूल शाखा जो है इसका हमें ध्यान रखना। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं को ठीक से पहचान नहीं लिया जाता तो सींचने के लिए प्रयुक्त किया गया जल व्यर्थ जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ने नहीं पाती है जबकि अन्य लताएं हरी भरी हो उठती हैं। तो भक्ति लता बढ़ेगी नहीं फिर हमारी। कूटी नाटी, निश्चित आचार। निश्चित आचार क्या है? चार प्रकार के जो नियम बताए गए हमारे लिए उस पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि उसका पालन करना, नियमों का पालन करना, उसको तोड़ना नहीं है। नियम अगर टूट रहे हैं हमसे, चार नियम, कई बार होता ना कि बोले आज ये नियम टूट गया हमसे, कई बार होता है तो आज चौथा नियम टूट गया, साल में तीन बार चार बार हो जाता कई बार कई भक्तों से, तो फिर दुखी हो जाते, सातवां नाम अपराध लग जाता है, अपराध उच्च अनर्थ भी लगते हैं। बड़े अजीब सी बात है, देखिए पहले तो आपके दुष्कृत उच्च अनर्थ आपको सता रहे हैं जो आपको भजन नहीं करने दे रहे हैं, फिर आप जो अपराध करते हैं तो उससे भी उत्पन्न होते हैं अनर्थ, और अपराध उच्च अनर्थ जो है आत्यंतिक ही होते हैं जब आप प्रेम भक्ति की जो है स्तर पर पहुंचते हैं, और उससे पहले प्रायिक ही होते हैं, यानी कि उसका पूरा 100% जो है समाप्ति होती है भाव की अवस्था में, वहां पर केवल अपराध का केवल आभास होता है, होता नहीं है, तो प्रायिक ही हो जाता है। लेकिन वास्तव में जब तक प्रेम भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचते, जब तक प्रेम में लीलाओं में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक वो आत्यंतिक ही नहीं होती है। इसलिए अपराध उच्च अनर्थ जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा समय लगता है इसको समाप्त करने में, बहुत समय लगता है। तो इसलिए ये क्या कारण है कि हम लोग इस प्रकार के नियम तोड़ते हैं, कई बार चार नियम तोड़ देते हैं? उसका कारण है जैसे हमने बताया पहले, क्योंकि अभी तक हम लोग पूर्व जन्म के जो संस्कार है, यानी कि पाप कर्म के संस्कार और पुण्य कर्म के संस्कार, उससे छुटकारा हमने अभी तक पाया नहीं है। वो कहीं ना कहीं बीज रूप में हमारे मन में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, और कहने का तात्पर्य है कि हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचे, अभी भी हम लोग अनर्थों से लड़ रहे हैं, अपने ही अनर्थों से लड़ रहे हैं। कूटी नाटी, कूटी नाटी का मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद, कभी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, ये शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकती, दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है। हमारे वर्ताव सरल तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए, हमारा आचरण महाजनों के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, यानी कूटी नाटी का मतलब होता है हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब बाहर कुछ अंदर कुछ, बाहर से हम लोग दिखा रहे हैं हमने बहुत अच्छा तिलक लगाया है, फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन भीतर से कली के चेले हैं। गोले कंठी माला नाके थिला कोपनी पेड़ा सही कली चेला, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ये कहते हैं, नाके थिला गोले कंठी माला कोपनी पेड़ा, ये तो कलीर चेला। तिलक लगा लिया समुद्र के किनारे, मछली लेके जा रहे, उसको कहते हैं कुटी नाट। फिर बोलते हैं हम भजन कर रहे हैं, भजन ऐसे कई देखे हमने भजन करते हुए। अगर हम कुटिया में जाए तो आप खराटों की आवाज नजर सुनाई देगी, भले डोंट डिस्टर्ब, मैं अभी भजन कर रहा हूं। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा, उस भजन का नाम है वैष्णव के। भाई किस तरह के तुम वैष्णव हो, एकांत में जाके तुम भजन कर रहे हो और मन से कंचन कामनी की चिंता हो रही है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है, ये तो पूरा वो ये कुटी नाटी है और क्या है, दिस इज हिपोक्रेसी। तुम सोच रहे हो तुम हरिदास ठाकुर हो, हरिदास ठाकुर तो उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं माया देवी आई थी, आपके पास भेज दे माया देवी, बचोगे नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार, प्रभुपाद जी के समय भी एक अफ्रीका से एक भक्त आया तो हरिदास ठाकुर की नकल करना चाह रहा था, उसने भी ऐसी कुटिया बना ली, तो वो भी प्रत्येक दिन जो है लाखों नाम ले रहा था। तो प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद ने इस पर ध्यान ही दिया, गौर ही नहीं किया, है ना, प्रभुपाद बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुए। तो प्रभुपाद चुपचाप रहे, तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद अब वो काफी प्रचलित हो गया है, उसका यश फैल रहा है और काफी लोग उससे मिलने आते हैं और इतनी भीड़ बढ़ गई है कि अब उसने स्थान अपना पेड़ में बना लिया है, मचान बना लिया, पेड़ में बैठा है वो। प्रभुपाद से उन्होंने कहा कि उन भक्तों ने कहा कि अब वो उसे पेड़ में मचान बना लिया, वहां पे वो भजन करने लगा और वहां बैठ के हरि नाम लेता है। तो प्रभुपाद ने कहा नाउ ही हैज बिकम मंकी। तो प्रभुपाद ने तब तक कुछ नहीं कहा था, जब देखा कि इनका यश फैल रहा है तो प्रभुपाल ने कहा कि अब तो ये वानर बन गया है। और कुछ समय के बाद वो वहां से चला गया, दोबारा कभी नहीं आया फिर वापस आंदोलन में। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम लोगों के संस्कार समाप्त नहीं होते, पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त नहीं होते और भक्ति के संस्कार पूर्णता जब तक नहीं लग जाते, तब तक हम लोग वास्तव में भजन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम लोगों को वास्तविक साधक नहीं कहा जा सकता। हम साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं तब तक भी, इसलिए ऐसे भक्तों को प्राकृत भक्त कहा जाता है। और प्राकृत भक्तों में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं ये यहां दिए गए हैं, निषिदाचार, कुटी नाटी, जीव हिंसा। जीव हिंसा का मतलब यहां श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया है, जीव हिंसा का मतलब है प्रचार के कार्य को रोक देना और केवल अपने भजन के बारे में चिंता करना, तो ये भी जीव हिंसा है। तो ऐसे प्रभुपाद देखिए वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए, है ना, लेकिन प्राकृत भक्त दिल्ली छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं, तो क्या होगा, अपना नुकसान तो कर रहे हैं और लोगों का भी नुकसान करेंगे। तो ये है जीव हिंसा। और लाभ पूजा प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सबसे ज्यादा भयानक शाखा है, बहुत ही भयानक है। और ठाकुर भक्तिरोध का कहना है भजन रहस्य में कि सारे अनर्थों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये जो अनर्थ है इससे छुटकारा पाना सबसे कठिन है। यश कमाने की इच्छा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण, और इसके लिए और ऐसी उपशाखा में क्या होता है। अच्छा, ये उपशाखा में देखिए, और शाखा में हो सकता है, उपशाखा में हो सकता है कि आप दुखी हो जाए, लेकिन यह ऐसी उपशाखा है जिसमें सुख मिलता है। और इस अनर्थ को विश्वनाथ चकित ठाकुर कहते हैं तरंग रंगनी, इस अनर्थ का नाम है तरंग रंगनी। तरंग रंगनी जैसे कि लहरें जब उड़ती हैं समुद्र में तो बड़ा अच्छा लगता है देखने, तो इसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमें यश प्राप्त होता है। लोग हमारी जय जयकार करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, MP3 लगाते हैं, जूक बॉक्स लगाते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, हमारी CDs बनती है, टेप मिनिस्ट्री बनती है, है ना, और आपकी व्यास पूजा बनाई जाती है, आपके चरण धोए जाती है, सब कुछ किया जाता है। अधिकार आपको किसी ने दिया लेकिन आपको मिल रहा है, बड़ी बड़ी मालाएं आती हैं और बहुत अनुयायी भी हो जाते हैं आपके। और फिर उसके बाद अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया, भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा। यश तो फैलेगा ही, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिनाम लेते थे गुफा में बैठ के, वो बाहर जाना नहीं पड़ता था, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उनका दर्शन करने आते थे, लेकिन उनके आने से वो प्रभावित नहीं होते थे, उनसे उनको हरिनाम करा के उनको भेज देते थे, जाओ आप सब लोग हरिनाम लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जो प्राकृत भक्त है वो फंस जाते हैं, प्राकृत भक्त लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में फंसते हैं। इस कारण से समय से पहले जब वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जब इच्छा हो जाती है, उनकी प्रबल इच्छा हो जाती है, उसको स्वीकार करने लगते हैं इस तरंग रंगनी को, तो फिर पतन निश्चित हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इम्पर्सनलिज्म इज लास्ट नेयर ऑफ माया। भक्तिनाथ ठाकुर ने 21 प्रकार के अनर्थों का वर्णन किया है चैतन्य शिक्षामृत में, और बताया ये वो 21 अनर्थ है जो हमें ब्रज में जाने से रोकते हैं, और उनकी तुलना 21 असुरों से की है जो ब्रज में थे, जिनका वध भगवान कृष्ण ने किया। पूतना की तुलना की है ढोंगी गुरु से, केशी राक्षस की तुलना की गई है आचार्य से, गुरु से, यानी कि आचार्य या गुरु बनने की इच्छा, यानी समझ लेना कि मैं आचार्य हूं, या समझ लेना कि मैं गुरु हूं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में गुरु सिंड्रोम, क्योंकि आपको सब गुरु मान रहे हैं तो हम गुरु हैं, है ना। लेकिन कल अगर आपको कहेंगे आप गुरु हैं तो मानेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया इतने दिन कि आप गुरु हैं। फिर कल आपको जब गुरु कहा जाएगा, गुरु बंगाली में होता है पशु, तो कल आपको जब गुरु कहा जाएगा तो आपसे सहन नहीं होगा, आप पचा नहीं पाएंगे, सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि आप गुरु थे ही नहीं कभी, क्योंकि शिष्य ही नहीं बना जो व्यक्ति, वो गुरु कैसे बन सकता है। गुरु बनने के लिए सबसे पहला जो है लक्षण यह है कि वो सबसे पहले वो प्रथम कोटि का शिष्य होता है, प्रथम कोटि का शिष्य जो है वही गुरु बनता है। और प्रथम कोटि का शिष्य कौन है? जो इन उपशाखाओं से दूर रहता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण। तो इसलिए हमारे आंदोलन में भी कई बार ऐसा हो चुका है कि समय से पहले जब आदर स्वीकार किया गया, भक्तों ने जब स्वीकार किया तो उनको पतन का रास्ता देखना पड़ा। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, महाजनो येन गतः सपन्तः, महाजन जैसे कर गए हैं वैसे हमने करना है। षट गोस्वामियों का आप देखिए, जीवन चरित्र देखिए, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का जीवन चरित्र देखिए कि कैसे उन्होंने मान सम्मान से हमेशा दूर रहे। अगर मान सम्मान उन्होंने स्वीकार भी किया तो केवल प्रचार के लिए और अपने गुरु परंपरा का यश बढ़ाने के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए नहीं। प्रभुपाद इसलिए हमेशा कहते थे मेरी सफलता का राज यह है कि मैंने यथारूप अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया। प्रभुपाद सारा श्रेय अपने गुरु महाराज को देते थे। प्रभुपाद कहते थे आज भी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूरे जगत में प्रचार कर रहे हैं अपने शिष्यों द्वारा। प्रभुपाद इस तरह से बोलते थे। इसलिए प्रभुपाद जी को यश अगर लोग देते भी थे उनको प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रभुपाद जी गुरु पूजा होती थी मंदिर में, डीटीज के सामने गुरु पूजा होती थी प्रभुपाद की, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि अधिकार है ना उनको। इसलिए प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी 1967 में श्री कृष्ण पंडित को, जो छिपीवाला मंदिर के इंचार्ज थे। उस चिट्ठी में प्रभुपाद लिखते हैं, माया कैन नेवर टच मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, माया से मुझे कभी डर नहीं है, मैं कभी माया के प्रभाव में नहीं आ सकता। कौन माया के प्रभाव में कभी नहीं आ सकता है? जो भगवान का नित्य परिकर है, भगवान का पार्षद है। तो प्रभुपाद ने वो शक्ति दी है। आज प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे जगत में भक्त हैं, चंडाल यावण मलेच्छ भी भक्त बन रहे हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये महाप्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए यहां पर बड़ा अच्छा बताया, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, से कल पाए उप शाखा बड़े बाड़ी जाए, स्तब्ध होए मूल शाखा बाड़ी तेने पाए प्रथम। तो यहां बता रहे चैतन्य महाप्रभु प्रथम मतलब सबसे पहले। महाप्रभु ने बोला कि सबसे पहले सीधा ब्रज में पहुंच जाओ, महाप्रभु कह रहे प्रथम ही सबसे पहले उप शाखार करे छेदन, सबसे पहले इसका छेदन करो। अगर इसका छेदन नहीं हुआ है तो तो भूल जाओ, ब्रज में आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि केशी दमन जो है, केशी दमन की लीला या केशी राक्षस जो है, इसी अनर्थ का सूचक है। इल्यूजन ऑफ बीइंग एन आचार्य, भक्त ठाकुर लिख रहे हैं, इल्यूजन, भ्रम हो गया मैं कि मैं आचार्य हूं, मैं वास्तव में इसका अधिकारी हूं, जो मुझे अधिकार, मुझे मेरी जो पूजा हो रही है उसके लिए मैं लायक हूं, आप सब मेरी पूजा करें। तो फिर जो इस लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्र में जो फंस जाता है, फिर उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। चार नियम को तोड़ता है उसको रीइंस्टेट किया जा सकता है, बहुत जल्दी रीइंस्टेट कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर बिल्कुल फर्स्ट क्लास रीइंस्टेट हो जाएगा। केवल भक्तों के संग में रहे, साधना अच्छी करे, आज्ञा का पालन करें, गुरु की सेवा करें, एकदम रीइंस्टेट हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे अनर्थ हैं, कई ऐसे अनर्थ होते हैं जिनको, जिनका छेदन करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें एक है लाभ पूजा प्रतिष्ठा और फिलोसफिकल डिविएशन। फिलोसफिकल डिविएशन इसलिए मुश्किल है इस अनर्थ को ठीक करना, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी सूक्ष्म इंद्रिय में हो रहा है, इसका प्रभाव आपकी बुद्धि में जा रहा है, मन में जा रहा है, और यहां से बाहर निकालना किसी को सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे कठिन है, क्योंकि आपके सटल बॉडी में एंटर कर चुका है। ग्रॉस लेवल पर है तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है हमें कि इस प्रकार के अनर्थों को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए अगर हम स्वीकार करेंगे, या समय से पहले हम लोग स्वीकार करेंगे आदर जिसके लिए हम अधिकारी नहीं है, तो फिर हमारे लिए पतन का रास्ता निश्चित है। तो ऐसे में जैसे यहां बता रहे हैं कि वैसे भक्त कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा अंदर से दुख रहेगा। हरि नाम में रुचि समाप्त हो जाए, नाम में रुचि तो वैसे ही नहीं थी पहले, अब तो कोई आशा ही नहीं रही। तो भक्ति ठाकुर कहते हैं ऐसे भक्त वास्तव में नाम नहीं ले रहे हैं, वो नाम अक्षरों का ही केवल उच्चारण कर रहे हैं, वो अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में नाम तभी ले पाता है भक्त जब भक्त के हृदय में क्या होता है, कम से कम नामाभास की स्थिति में हो, तो बोल सकते हैं कि इसको शुद्ध नाम का आभास तो हो रहा है, जिसको रुचि कहा जाता है, रुचि, लोभ, जिसको नाम में रुचि आ गई है वो, उसको रुचि रहेगी लाभ पूजा प्रतिष्ठा में। अगर किसी की लाभ पूजा प्रतिष्ठा में रुचि है, इसका मतलब उसके नाम में रुचि नहीं है, इसका मतलब कनिष्ठ अधिकारी है। और जिसकी रुचि नाम में है, नाम में रुचि का अर्थ क्या है, अब पूछेगा कोई नाम में रुचि का क्या लक्षण है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता व जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताल भक्तिर अहितुकी त्वयि, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी अहितुकी भक्ति चाहता हूं, हे कृष्ण मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, मैं अच्छे अच्छे प्रवचन नहीं देना चाहता हूं, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी अहितुकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। और ये कैसे संभव हो पाएगा, इसका उत्तर भगवान ऋषभदेव अगले अध्याय में देंगे। भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं, महत् सेवां द्वारम आहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत् सेवा करने से, वैष्णवों की सेवा करने से हम लोग इस उपसागर से छुटकारा पा सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में यही सुझाव दिया है, यश रूपी चंडालनी, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मेरे हृदय में नृत्य कर रही है, तांडव नृत्य कर रही है और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, कैसे निकालो इस चंडालनी को बाहर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सुझाव दे रहे हैं, जो महाप्रभु के, उनके जो सेना नायक हैं, उनके कमांडर्स हैं, उनके चरणों का आश्रय लो, रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, उनका आश्रय लेने से यह श्रुपी चंडालनी भाग जाएगी, डर के भाग जाएगी। तो ये लाभ होता है वैष्णों की सेवा से, गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा से, वैष्णों की सेवा से ये यश रूपी चंडालनी आपको छोड़ के भाग जाए, फिर आप अपने को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तब आपको अनुभूति होगी कि मैं तो दास हूं केवल, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। इसलिए महाप्रभु ने सबसे पहले यह क्यों बोला, दास के बारे में क्यों बताया, जब तक यह अनुभूति नहीं हो रही है अन्य रसों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अन्य रसों में भी आधार जो है वो दासत्व की, दासत्व की बात, माधुर्य रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, सब में सेवक बनना पड़ता है, सेवा की भावना होती है। गोपियां क्या कर रही है, मंजरियां क्या कर रही है, सेवा कर रही है, एंजॉय नहीं कर रही, वो एंजॉय कर रही है सेवा करके, एंजॉय करने के बाद सेवा नहीं कर रही है, सेवा करके वो एंजॉय कर रही है, ये भाव है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया जगह, गोपी भाव मीन्स 24 आवर सर्विंग कृष्णा मीन्स गोपी भाव, 24 घंटे सेवा भाव इज गोपी भाव। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तब ये नमाम पयांति। तो ये गोपियां कर रही है, हम कितनी देर सेवा कर रहे हैं, हम कितने दिन हरिनाम लेते हैं। त्रिनाद अभी सुने चेन तरोर अपी सही सुना अमानी ना माने देना कीर्तनीय सदा हरि ही। ऐसा भक्त जो है हरिनाम सदा हरिनाम लेता है क्योंकि उसके नाम में रुचि है। तो खुद को अपने आप परखे, अपना आत्मान्वेषण करें, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में शास्त्र पढ़ रहे हैं, गुरु और साधु के चक्षु से अगर शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा, आप अपने आप को देख सकते हैं ऐसे दर्पण में कि हम लोग कितने पानी में हैं। हम लोग 16 माला क्या पूरी हो जाती है, हम लोग उस बीड बैग को लटका देते हैं और अगले दिन के लिए भूल जाते हैं बीड बैग। बीड बैग है नहीं, देखिए यहां पर है। तो नाम में है रुचि। हमारे आचार्य ने इतना बढ़िया दिया है, विश्वनाथ ठाकुर ने, माधुरी कादंबरी में, श्री रूप गोस्वामी ने, भक्त राम सुंदर में इतना सुंदर साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया प्रोसेस को कि कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता है। और जो बेवकूफ बन रहे हैं उन्होंने ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, और उन्होंने ग्रंथ अगर पढ़े हैं तो गुरु और साधु के चक्षु से नहीं पढ़े हैं, उन्होंने अपने चक्षु से पढ़े हैं। क्योंकि उन्होंने अपने चक्षु से पढ़े हैं क्योंकि अपने चक्षु त्रुटिपूर्ण है, इसलिए उनके अंदर जो है वो दिव्य ज्ञान कभी प्रकाशित हुआ ही नहीं। इसलिए कीर्तनीय सदा हरि का मतलब ही नहीं है, और त्रिनाद भी सुनिश्चय इसका लक्षण ही प्रकट नहीं होता। और जिनके अंदर ये लक्षण है नहीं वो कनिष्ठ अधिकारी है, वो प्राकृत अवस्था में है। तो इसलिए अपने आप को हमें पहचानना है सबसे पहले। जब तक मरीज ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं मरीज हूं, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, वो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने बताया है आदौ श्रद्धा, सबसे पहले गुरु और साधु और शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का आधार है। ये श्रद्धा जो है जब कंडेंस हो जाता है उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए स्वर्गलोक में जाकर जो सुख प्राप्त होता है उस सुख से भक्त आकर्षित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, उसको लगता है कि आकाश में फूल के समान है तो स्वर्गलोक का सुख। या फिर कैवल्य के साथ एकत्व की जो प्राप्ति हो रही है वो नर के समान है। तो इसलिए साधन भक्ति के साथ दो लक्षण जो प्रकट होते हैं वो प्रकट होने चाहिए, क्लेशाग्नि, फिर क्या है शुभदा। शुभदा, शुभदा के लिए बड़ा अच्छा बताया है श्री रूप गोस्वामी ने कि शुभदा का मतलब है कि ऐसा भक्त जो है वो पूरे मानव समाज के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए क्या चाहता है, हित चाहता है, और चाहता है कि जो मैंने प्राप्त किया है, जो मुझे आनंद मिल रहा है, दूसरों को भी मिल रहा है। रूप गोस्वामी कहते हैं शुभानी प्रीणम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादि ख्यात्यानी मनसिवी। यानी विद्वान जो कहते हैं शुभदा का मतलब यह है कि अन्य जीवात्माओं के लिए भी उसको प्रेम रहता है, शुभदा का अर्थ है। यानी कि वो चाहता है कि अन्य जीवात्माओं को भी ये कृष्ण प्रेम मिले या कृष्ण भक्ति का ये सुलभ रास्ता मिले। जैसे चैतन्य महापुरुष झारखंड के जंगलों में जानकर पशुओं को भी नृत्य करा दिया, प्रभुपाद धारण दे रहे नेक्टर डिवोशन में। और इस प्रकार कई अच्छे सद्गुण प्राप्त होते हैं, महात्माओं के गुण प्राप्त होते हैं शुभदा। तो इस तरह से और कई लक्षण बताए हैं। मोक्ष लघुताकृत बताया है, मोक्ष भी तुच्छ लगता है, जैसे कि हमने बताया कैवल्य नरकायते। और उसके बाद क्या बताया है, मोक्ष लघुताकृत के बाद क्या बताया है, दो बताए हैं ना, एक है क्लेशाग्नि शुभदा, फिर मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। सुदुर्लभा बहुत दुर्लभ है, भाव भक्ति बहुत दुर्लभ है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इट्स ऑल्सो चीप, ये ऐसा नहीं कि मार्केट में थोक में मिल रहा है। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु तो कली काल में वो इतने दयालु है, महावदन न्याय है, वो तो सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि दुर्लभ है। हम नहीं कह रहे, श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे सुदुर्लभ है, समात्मा सुदुर्लभ है ना, भगवान की गीता में बता रहे हैं। सुदुर्लभ का मतलब ये है कि ये सबको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि महाप्रभु कृपा तो दे रहे हैं। श्री गौर गोविंद महाराज बड़ा अच्छा बता रहे, इसका उत्तर देते हैं। गौर गोविंद महाराज बोलते यस महाप्रभु मर्सी इज फॉर एवरीवन, बट योर कंटेनर ऑफ योर हार्ट इज फुल ऑफ होल्स। क्योंकि जब वो कृपा आपके हृदय में बरसती है तो नीचे से निकल जाती है, क्योंकि आपके हृदय का जो बर्तन है उसमें छेद ही छेद भरा हुआ है, वो नीचे से गायब हो जाता है। होल्ड करने के लिए पात्र नहीं है आपके पास। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, आप अंदर बैठे हो, आप सूर्य को कैसे दोष दे सकते हो? इसी तरह से महाप्रभु की कृपा सबके पास है, सबके ऊपर है, लेकिन उसको सही रूप से लिया जाए तो कृपा मिलेगी। इसलिए उसको सुदुर्लभ बोला गया है। और सांदरानंद विशेष आत्मा, यानी कि ये जो ब्लिस है, प्रेम भक्ति का जो ब्लिस है, ये दो लक्षण बताया प्रेम भक्ति के, ये इतना कंडेंस होता है कि जिस तरह से लोहा होता है उसमें से सुई नहीं निकल सकती, इतना कंडेंस होता है। यानी कि जो प्रेम भक्ति के स्तर पर है उसको इंद्र तृप्ति का आभास तक नहीं होता है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं उसको आभास तक नहीं होता है ना, और जो प्राकृत भक्त है उसको कृष्ण प्रेम का आभास तक नहीं होता है, उसको नामाभास भी नहीं हो रहा है। प्राकृत भक्त को तो नामाभास भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रेम भक्ति के स्तर पर है उसको इंद्र तृप्ति का आभास नहीं हो रहा है। और फिर श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है प्रेम भक्ति, जैसे माता यशोदा और श्रीमती राधा कृष्ण को आकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार ये छह लक्षण बताए गए हैं। हमारा जो शाह, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो परंपरा में जो दिया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा, वो पूर्ण है और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और वास्तव में जो भक्ति में आगे बढ़ेगा वो निश्चित रूप से देखेगा कि वास्तव में ये संसार का जो सुख है ये बिल्कुल घोड़ा डिम की तरह है, या आकाश में फूल की तरह है, या कैवल्य जो का जो सुख है वो क्या है, नर्क में जाने के समान है। कई प्रकार के सुख बताए श्री रूप गोस्वामी, योग सिद्धि, अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति, शीतावशिता प्राकाम्य कामावशिता, आठ प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, उससे बड़ा सुख मिलता है। ऐसे कई संत घूम रहे हैं समाज में, सिद्धियों से लोगों को प्रभावित करते हैं, वाक सिद्धि से, वशिता सिद्धि से, बोलने से ही सबको वशीभूत कर लेते हैं, और क्या बोल रहे हैं बिल्कुल बकवास, लेकिन सब लोग वशीभूत हो जाते, तालियां बजाते, सब लोग तालियां बजाते हैं। एक बार एक हमारे भक्त ने चुनौती देते हुए एक व्यक्ति को पूछा ऑडिटोरियम में, सिरी फोर्ट में कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने काटते हुए तीन प्रश्न एक साथ पूछ लिए, तो उन्होंने उत्तर दिया मैं एक समय में एक ही प्रश्न का उत्तर देता हूं, तीन प्रश्नों का उत्तर एक साथ नहीं देता हूं, इसलिए आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। और लोगों ने तालियां बजाई इसके लिए, ऐसे उत्तर के लिए सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आया उत्तर दिया गया जिन्होंने पूछा। तो ऐसे ऐसे लोग जो है उत्तर देते हैं और बोलते हैं कि प्रातःकाल उठे तो सबसे पहले अपना चेहरा देखें और मुस्कुराएं। भगवान ने आपको क्यों बनाया है? भगवान ने आपको बनाया है खुश रहने के लिए, तो आप सबसे प्रार्थना है खुश रहने का सबसे आदर्श साधन क्या है? नृत्य करें। तो सारे के सारे नृत्य करने लगे, वहां सभा में जितने लोग थे, हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, वो सारे डांस कर रहे हैं, तो प्रोसेस का कुछ पता ही नहीं, और लोग नाच भी रहे हैं। और ये नहीं कि कोई गांव से लोग आए, शिक्षित लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की सिद्धियों का दुरुपयोग किया जा रहा है समाज में। और मुक्ति के द्वारा ब्रह्मानंद का सुख भी बताया गया है, स्वर्ग का सुख तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मानंद के सुख के सामने उसको एक कण के हिसाब से बताया गया है, एक कण के बराबर भी नहीं है जो ब्रह्मानंद का सुख है। लेकिन वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा है, ब्रह्मानंद का सुख भी जो है उसके लिए बिल्कुल क्या है, नगण्य है, वो उसके लिए नर के समान है, उसको त्याग देता है। इसलिए चेतन चरतानंद कविराज गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये सारे भक्त जितने भी थे, सारे प्रजा के लोग थे, ये सारे शांत थे, सारे सुखी थे, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में लगे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान ऋषभ देव के आदेशानुसार ये भक्ति के कार्य में लगे थे। तो इस तरह से हम लोग भी भागवत जो है श्लोक जो है जो पढ़ते हैं हम लोग, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए देखने के लिए कि ये श्लोक, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं हमारे लिए कैसे लागू होते हैं, और प्रभुपाद ने तात्पर्य बिल्कुल ऐसे दिए हैं कि इसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। इसलिए हमें इन सांसारिक सुख से आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये सांसारिक सुख एक भक्त के लिए कचड़े के समान है। स्वर्लोक का सुख वहां भी वो कचड़े के समान है। स्वर्लोक में कितना सुख है इसका आप अगर शास्त्रों में वर्णन सुन लेंगे तो फिसल जाएंगे। अप्सराएं हैं, मंदाकिनी नदी है, वहां पर जो भी कुछ आप ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तत्काल ही खून में बदल जाता है, शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, फूल माला सूखती नहीं है, बीमारी आपको लगती नहीं है, हवा की झोंके के समान होती है बीमारी। वहां डॉक्टर अश्विनी कुमार है, जुड़वा है, वो तुरंत ही इलाज कर देते हैं आपका। रसोई की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको खाने को चाहिए इच्छा प्रकट करिए आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कौन नहीं जाना चाहेगा स्वर्लोक बताइए? अमेरिका जाने के लिए भक्त लोग तैयार हैं, तो स्वर्लोक जाने के क्यों तैयार नहीं होंगे अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो। और भक्त लोग जो धाम नहीं जाते हैं स्वर्लोक जाते ही हैं, तो वैसे ही आपको वीजा मिल गया। तो जो धाम नहीं जाने वाले हैं स्वर्लोक जाना निश्चित है, लेकिन भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि विशाल सुख है वहां पर, लेकिन शिण्य पुण्य मृत्य लोकम विशन्ति। लेकिन वहां सुख समाप्त होने पर, बैंक बैलेंस जब समाप्त हो जाता है, तो वापस आना पड़ेगा मृत्यु लोक में, या कूड़ा खाने के लिए, मल खाने के लिए, जैसे इंद्र आए थे यहां सुअर बन के। तो स्वर्लोक का सुख भी जो है शाश्वत नहीं है, ब्रह्मानंद का सुख भी जो है वो रहता भी है तो वहां कोई सेवा नहीं है, इसे वहां को रहना नहीं चाहता। कमरे में आपको बंद कर दे ये बोल के, इस कमरे में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, लेकिन आपको अकेले रहना पड़ेगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस कमरे में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, रहेंगे आप? हम तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए ब्रह्मानंद का सुख भी जो है वो नर के समान है, इसका भी परित्याग करना चाहता है भक्त और तुच्छ समझता है इसको, और केवल भगवान की भक्ति चाहता है। इसलिए षड गोस्वामी ने दिखाया, त्यक्त्वा तूर्ण अवशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वादीन गणेश कौ करणया कोपीन कंथाश्रितौ, है ना। मंडलपति त्याग कर उन्होंने कोपिन और कंथा का आश्रय लिया, वृंदावन में बंगला नहीं बनाया, वृंदावन में कोठी नहीं बनाई। हाँ, गोपी भावर सामृताद लहरी, उसके बाद गोपी भावर सामृताद लहरी कलोल मग्नौ मोहर, क्योंकि महाप्रभु के चरणों में प्रेम था तो विराग था उनका, असली विराग था, नकली नहीं। क्योंकि ब्रज में जाके क्या किया महाप्रभु पूछेंगे, अभी महाप्रभु पता कर रहे हैं अपने पार्षदों के बारे में जो वृंदावन गए हैं, जो मेरे जो पार्षद गए हैं वो वृंदावन में कैसे रह रहे हैं, क्या खाते हैं वो, और कितना विश्राम करते हैं, तो बताते हैं। फिर वहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो पहले जो गोस्वामी गए थे, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, उनके बारे में बताते हैं कि केवल डेढ़ घंटा सोते हैं, विश्राम करते हैं, और 22.5 घंटे भजन करते हैं, और अगर कोई मधुकरी देता है, रोटी देता है, तो बिना नमक के खा लेते हैं, या यमुना जी का जल पी लेते हैं, या यमुना की रेती से बाटी बनाकर उसी को ही गर्म करके खा लेते हैं। कभी कभी तो ये भी नहीं खाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो 2 दिन में एक बार छाछ पीते थे, कई बार निद्रा आहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई ब्रज में रहना चाहता है, वन मस्ट बी ए गोस्वामी। गोस्वामी ही वास्तव में ब्रज में रहने के लिए अधिकारी है, और उसका लक्षण श्रील रूप गोस्वामी ने उद्देशामृत के पहले श्लोक में दे दिया है, जिसका अभ्यास हमें दिल्ली में रहकर करना है। वाचो वेगम मन सक्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान युवशहेत धीरा सर्वाम अपनी मां पृथ्वी से शिष्या। वो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने टीका में लिखा है कि ये मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण है। उत्तम वैष्णव की बात नहीं कर रहे, ये मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण है। अगर कोई 6 वेगों को सहन करता है तो, यानी कि वो शिष्य बना सकता है पूरे संसार में। इसलिए शिष्य बनाने के लिए आपको धाम से आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको गुरु परंपरा से जोड़ने की आवश्यकता है, यह जरूर है। इसलिए जिस तरह से पेट्रोल पंप में व्यक्ति जो खड़ा है आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए अधिकार उसको प्राप्त है, हालांकि पेट्रोल पंप उसका नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी में वो पेट्रोल डाल सकता है, उसको अधिकार प्राप्त है। तो इसी तरह से दवाई की दुकान में केमिस्ट जो है दवाई देने के लिए उसको अधिकार प्राप्त, हालांकि वो डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से मध्यमाधिकारी भक्त जो है आपको उत्तम वैश्य की सेवा में लगा सकता है। ऐसा भक्त ठाकुर कह रहे हैं जय धर्म में कि मध्यमाधिकारी ही केवल जानता है कि वैश्य सेवा क्या होती है, वही प्राकृत भक्तों को वैश्य सेवा में लगा सकता है, उत्तम वैश्यों की पहचान करा सकता है मध्यमाधिकारी भक्त। प्राकृत भक्त जानता ही नहीं है भक्त कौन है। प्राकृत भक्त जो सोचता है कि मैं ही भक्त हूं, उत्तम वैश्य सोचता है मैं भक्त हूं ही नहीं। दोनों तो में कितना अंतर है देखिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे कि मैं तो भक्त हूं ही नहीं, इससे अच्छे तो ये धाम के पशु हैं, पिल्लों को क्यों भगा दिया तुमने। कौन था वो सेवक, बिहारी, बिहारी तुमने क्यों भगा दिया उन पिल्लों को, ले क्या वापस, जब तक वो पहले प्रसाद नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं लूंगा, वो पहले लेंगे फिर मैं लूंगा, उनका उचित लूंगा मैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते थे ऐसे। और किसी ने 200 रुपए दिए, जाओ बाढ़ दो धाम के जितने पशु हैं जानवर हैं सबको दे दो, 200 रसगुल्ले मंगवाए बाढ़ दो इसको। बोलते ब्राह्मण है यहां पर, इतने सारे ब्राह्मण हैं ब्रज में, उनको नहीं खिलाएंगे आप, उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से तो ये जानवर अच्छे हैं जो वास्तव में धामवासी हैं, इनके शरीर में 24 घंटे ब्रज की धूली लगी रहती है, कपटी तो नहीं है लेकिन ये ब्राह्मण छुपे छुपे क्या करते हैं पता नहीं क्या करते हैं, उनको नहीं देना, ये पशुओं को दो जानवरों को दो। तो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इनका जीवन चरित्र पढ़िए, इनको किस तरह से पोल खोली है, नकली जो बाबा जी लोग होते थे उनकी पोल खोली इन्होंने। एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज भजन कर रहे थे पब्लिक लैट्रिन में, एक पास में एक और आ गए बाबा जी सो कॉल्ड, वो भी नकल करने लगे उनकी, वो भी बोले कि हम भी करेंगे इसी तरह से, तो उनको लगा उनका भी यश फैलेगा। बाबा जी महाराज दरवाजा नहीं खोलते थे, कई बार तो पुलिस वालों को ही बुलाया गया, दरवाजा खोला ही उन्होंने, क्योंकि नाम में रुचि है, नाम में रुचि है तो पब्लिक लैटर में जब करके दिखाओ, हमें तो कूलर की आवश्यकता पड़ती है हरि नाम लेने के लिए गर्मी के मौसम में, तो नाम में रुचि नहीं है। तो बाबा जी महाराज जब कर रहे हैं तो बाबा जी महाराज बड़ी जोर से डांटा उसको, क्योंकि वो रात को लेट आया था, मैं जानता हूं तुम कहां से आ रहे हो रात को, तुम बता हरिनाम कैसे ले रहे हो, बिल्कुल वैसे ही कि जिस तरह से एक स्त्री अगर मैटरनिटी होम में भर्ती हो जाए लेकिन गर्भवती नहीं है लेकिन फिर भी चिल्ला रही है, तुम्हारा हरिनाम लेना भी वैसे ही है, तुम चिल्ला तो रहे हो हरे कृष्णा लेकिन अंदर कुछ नहीं है, खोखले हो तुम अंदर से। तो बाबा जी महाराज कहते हैं जाओ भक्तों के संग में रहो, धोखा मत दो अपने आप को। तो बाबा जी महाराज हालांकि वो भजनानंदी थे लेकिन नवदीप के कई ऐसे तथाकथित बाबा जी लोगों की जो पोल खोली उन्होंने, गौर किशोर बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो इस तरह से हमारी परंपरा जो है बहुत गौरवशाली है, और आज चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो सत्य हो रही है, पूरे पृथ्वी में आप देख रहे हैं वैष्णव ही वैष्णव है। प्रभुपाद जी कृपा है कि चंडाल देश में भी जाए, यावनों के देश में जाए, मलेच्छों के देश में जाए, तो वहां जाकर भी आप भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी में ब्रज का दर्शन कराया है। प्रभुपाद जी प्रचार न करते आज कोई मायापुर ना जाता, सब मायापुरी जाते फ्लाईओवर देखने जो अभी बना है हाल ही में, मायापुरी जाते, केवल मायापुर ही जा रहे थे, मायापुर कभी नहीं गए थे, मायापुर का नाम ही नहीं सुना था हम में से किसी ने। भक्ति और ठाकुर ने अगर पता नहीं लगाया होता जन्म स्थान तो योगपीठ का दर्शन किसी को ना होता, ये इन आचार्यों के देन है। नवदीप मंडल में जितनी भी लीला सलिया देख रहे हैं ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर और भक्ति ठाकुर की देन है ये, और प्रभुपाद जी का योगदान है पूरे विश्व के लिए। आज राधा कुंड का दर्शन हो पा रहा है प्रभुपाद जी की वजह से। जब उपदेशामृत ग्रंथ का प्रकाशन हुआ तो प्रभुपाद ने कहा कि 1,00,000 इसका प्रतिया इसकी छपवाओ, तो उनको बोला प्रभुपाद इतनी किताबें क्या करेंगे, ये तो सबके लिए नहीं है। प्रभुपाद ने कहा तुम नहीं जानते सबके लिए है, छापो उसको। पूरे पृथ्वी में राधा कुंड का दर्शन करा दिया प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए इन आचार्यों की बड़ी विशेष कृपा है हम जैसे पतित जीवात्माओं के ऊपर, और हमेशा कृतज्ञ हमें रहना चाहिए, और कृतज्ञता हम प्रकट कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि हम जब प्रचार करें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटकर, प्रभुपाद जी के संदेश को आगे पहुंचाकर, हम जो है वास्तव में जनमानस का उद्धार कर सकते हैं। प्रभुपाद ने वास्तव में क्या किया है, प्रभुपाद ने षड गोस्वामियों का ही कार्य किया है। चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों को क्यों भेजा वृंदावन कि जाओ लीला सलियों का पता लगाओ, है कि नहीं? मंदिर की स्थापना करो, विग्रह की स्थापना करो, और वही प्रभुपाद ने किया। पूरे पृथ्वी को लेकर आ गए वृंदावन। सबसे पहले प्रभुपाद 71 में 50 अमेरिकन डिसाइबल्स को लेकर आए थे वृंदावन में, एक महीना कार्तिक मास में रहे थे, वृंदावन का दर्शन कराया प्रभुपाद ने। गोस्वामियों का तो कार्य किया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा आई एम लाइक द सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। प्रभुपाद ने बोला एक जगह एक स्थान पे, जस्ट लाइक द सिक्स गोस्वामीज वर स्टेइंग अंडर अ ट्री एवरी नाइट, आई एम ऑल्सो स्टेइंग डिफरेंट टेम्पल्स एवरी नाइट एंड ट्रांसलेटिंग द स्क्रिप्चर्स जस्ट लाइक द गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। प्रभुपाद कहते थे कि मैं तो, आप लोग तो फिर भी लाभ उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग मंदिर में रहते हैं, मैं तो फिर भी अभी मंदिर नहीं रह रहा हूं क्योंकि अभी भी मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं मंदिर एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाता हूं, तो इसका पूरा मैं लाभ उठाना चाहिए। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ प्रभुपाद जी दिया है, चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ दिया है प्रभुपाद जी, जितने भी ग्रंथ हैं उसका बड़ा सावधानी से भक्तों के संग में रहकर हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। एक ही जीवन मिला है, अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो यह मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा, फिर सावधान, उसके लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगला जन्म कैसा होगा हमें नहीं पता है क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। यह सोचे कि अगले जन्म में भी तो शुरू कर सकते हैं भक्ति, लेकिन भक्ति जो है कठिन हो जाएगी, इसलिए इस जन्म में ही सावधानी से। इसलिए रतन दास ठाकुर कहते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदो मोई सावधान माते, बड़ी सावधाना सावधानी से हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। पहले तो हम खुद भक्त बने, फिर दूसरों को भी भक्त बनाए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म जार। अगर मनुष्य जन्म मिला, अगर आपको, अगर आप मानते हैं मनुष्य हैं, वो भी भारत भूमि में मिला है, तो जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करो और परोपकार भी करो, दूसरों को भी बताओ प्रचार के माध्यम से। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री राधिका रमण की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की, श्री कृष्ण बलराम की, गौर प्रेमानंद समय भक्त।